तो पिछली बार जो हमने कवर किया था 11वां श्लोक, तो हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं 10 मिनट के लिए। इसमें डिस्कशन था, भगवान बोलते हैं यथा माम प्रपद्यंस्ते तामस तथैव भजाम्य हम, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो वैदिक जो साहित्य है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसका डिज़ाइन करने का बहुत सुंदर तरीका है कि जैसी आप इच्छा करेंगे वैसे ही भगवान आपको जो है आपकी श्रद्धा उसमें बढ़ाएंगे। ये स्वतंत्रता है जो भगवान ने एक लिविंग एंटिटीज को दे रखी है। क्यों दे रखी है कोई बता सकता है? काफी समय से लोग आ रहे हैं भगवद्गीता क्लास में, अगर कोई भी बताना चाहे तो, क्योंकि क्लास शुड बी इंटरैक्टिव, वरना तो मंदिर में बहुत सारी भगवद्गीता क्लासेस होती हैं, हम सुनते हैं चले जाते हैं, है ना? तो थोड़ा इंटरेक्शन होना चाहिए। आप में से कोई भी बता सकता है कि क्यों भगवान ऐसा करते हैं? ओके नहीं, वो तो इसमें लिखा हुआ ऑलरेडी, पर ऐसा क्यों करते हैं? भगवान ने ये स्वतंत्रता क्यों दे रखी है हमें, हालांकि हम मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज्यादातर समय हम जो है अपनी स्वतंत्रता का क्या करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, फिर भी भगवान हमें ये स्वतंत्रता क्यों देते हैं? अच्छा पॉइंट है, और कोई जो एग्जैक्ट जो पॉइंट है उस पर नहीं आए? हाँ जी, बहुत सुंदर पॉइंट है, पर मेन पॉइंट जो है वह है लविंग रिलेशनशिप है भगवान के साथ। प्रेम जो है किसी से जबरदस्ती नहीं हो सकता। हाँ, आप अगर किसी को बोलो कि मेरे से प्रेम करो, और वो हो सकता है वो आपको दिखाए, ओबीडियंस दिखाए आपके लिए, तो उससे कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, वो एक जो है एक तरह से मैकेनिकल हो जाएगा सारा। जैसे बटन दबाया और मशीन ने काम किया, तो उसमें फिर भाव नहीं रहता। तो इसलिए भगवान स्वतंत्रता देते हैं। जैसे बच्चे हैं ना, जो चाहे कोई कितना भी सीनियर हो या जूनियर हो, जब लुका छिपी का खेल करते हैं तो बता के नहीं छुपते हैं। चाहे कोई बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, जब खेल खेलते हैं लुका छिपी का तो बता के नहीं छुपते हैं कि मैं यहाँ छुपूंगा, आप मेरे को ढूंढ लेना करके। तो उसमें आनंद नहीं है उस प्ले में। तो इसी तरह से जो लविंग रिलेशनशिप है उसमें स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है, तभी हृदय से भाव आएगा। इसीलिए भगवान ये हमें स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि हमारा उनका प्रेम का संबंध है। मम वंशे जीव लोके जीव भूत सनातना, हम सब भगवान के अंश हैं, और अंश का कार्य है अंश की सेवा करना। तो इस तरह से भगवान जो है स्वतंत्रता देते हैं हमें, ताकि हम अपना लविंग रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप कर सकें। तो इसका मेन जो कह सकते हैं कि सार था, ये था कि हमें भगवान की भक्ति में लगना है। तो आप देखेंगे कि भगवान किस तरह आपकी हेल्प करते हैं। जैसा आप भाव रखेंगे भगवान के लिए, वैसा ही भगवान आपकी हेल्प करेंगे, और जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब अपने आप आपकी ले लेंगे। इट्स अप टू यू, ये सब आपके ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं भगवान से। तो आगे का जो श्लोक है अब वो देवी देवताओं से रिलेटेड है, तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो बताया गया है कि कैसे देवी देवताओं के को हम समझने का प्रयास करेंगे, वो कौन है, भगवान कौन है बेसिकली, हा? और क्यों ये बार बार भगवद्गीता में जोर दिया जाता है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो आप सबके पास भगवद्गीता है, कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास भगवद्गीता ना हो? अगर कोई है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जिनके पास है वो उनके पास बैठ करके शेयर कर सकते हैं। तो श्लोक हम एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग एक बार रिपीट कर सकते हैं अगर चाहें तो। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। पेज नंबर 158 था, इनको नहीं मिला। तो इसका तात्पर्य इस प्रकार है, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का शीघ्र फल प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तो हम प्रभुपाद के परपट को पढ़ेंगे, तात्पर्य को पढ़ेंगे और उसको और भी डीपली जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। तो प्रभुपाद का जो परपट होता है वो जो लोग भगवद्गीता को शायद बहुत स्टैंडर्डाइज नहीं पढ़ना जानते हैं उनके लिए एक छोटा सा है हिंट कि जो पहली दो लाइन होती हैं तात्पर्य की वो बहुत मेन होती हैं और प्रभुपाद पूरे परपट में जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से उसको अप्रूव्ड करते हैं। तो ये दो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बोल रहे हैं इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। तो हमारे जो जो वेदाज हैं उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो यहां पे जो डिस्कशन हो रहा है सकाम कर्मी कर्मजा ये सब कर्मकांड की बात हो रहे हैं कि कर्मकांडी लोग जो है वो देवताओं की पूजा करते हैं और ऐसे लोग कौन है, अल्पज्ञ हैं, मतलब अल्पज्ञानी हैं। और प्रभुपाद ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, प्रभुपाद जहां भी जो चीज लिखते हैं उसका पूरा अप्रूवल देते हैं। आप भगवद्गीता के ही 7th चैप्टर में देख सकते हैं 0.21 या 0.22 समथिंग, आई जस्ट सी 7.21 में होगा मोस्टली, हाँ 7.23 में है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अंतवंतु फलम तेषाम तद भवत्यल्प अल्प मेधसाम। अल्प बुद्धि वाले हैं, आप भगवान क्यों बोल रहे हैं ऐसा, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो डिवोटीज हैं उनका पोजीशन क्या है, दे आर लाइक अ सर्वेंट, वो भी जीवात्मा है हमारी तरह परंतु भगवान के द्वारा एम्पावर्ड हैं और भगवान के भक्त हैं। लेकिन सम आदर्स हम उनको जो है भगवान के रूप में, जैसे इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद की बहुत भ्रांत धारणा है पूरे जगत की, उनको भगवान का डिफरेंट डिफरेंट अवतार मान लेते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट अवतार मान करके हम उनकी जो है क्या करते हैं, उपासना करते हैं और बोलते हैं आई एम द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा। पर ये पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि डिवोटीज जो है केवल भगवान के ही हो सकते हैं, क्योंकि लोग देवताओं के पास किस लिए जाते हैं, अपनी मेटीरियल डिजायर को फुलफिल करने के लिए, जो उनकी भौतिक इच्छाएं हैं उनको पूरी करने के लिए जाते हैं। ऐसे सकाम कर्मी जो भी देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या होता है पीछे मोटिव, कि मुझे उसके बदले में कुछ मिले। और डिवोशनल माने होता है कि लव, डिवोशन, डिवोशन का मतलब होता है लविंग सर्विस, डिवोशनल सर्विस, इसको बोलते हैं प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। तो लव यहां पे होगा, लव का मीनिंग होता है कि 24 आवर्स इन अ डे, 24 घंटे दिन में, सातों दिन हफ्ते के, 365 दिन साल के, ना कि ओनली ट्यूसडे और सैटरडे। भगवान को भोग लगा के आते हैं, हनुमान जी को भोग लगा के आते हैं, या शिव जी का सोमवार है तो उनको भोग लगा के आते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ तो वो जाते हैं और उनका मूड क्या होता है, मोटिव क्या होता है, 2 रुपए का कोकोनट चढ़ाएंगे, बोलेंगे भगवान मेरी 2000 रुपए की नौकरी लगवा देना बस। रिटर्निंग है। तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि मेटल एग्जाम्पल है, जैसे कि एक बिजनेसमैन होता है और एक फादर होते हैं। यदि आपका बेटा जो है किसी दुकानदार के पास जाता है, उसके पास 20 रुपीज हैं, कहता है कि मुझे जो है एक सिगरेट का पैकेट दे दो 555 ब्रांड, तो क्या करेगा, उसको ही पता है दुकानदार को दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा है, मगर वो 20 रुपीज आपसे लेगा और आपके बेटे को क्या करेगा, एक सिगरेट का पैकेट दे देगा। परंतु सेम बच्चा पिता के पास जाता है और बोलता है पापा मुझे 20 रुपए दे दो, क्या करना है बेटा, 555 ब्रांड सिगरेट का पैकेट खरीदना है पापा, क्या करेंगे, he will slap, थप्पड़ मारेगा अपने बेटे के और समझाएगा। तो कृष्णा जो है वही करते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट डिवोटीज गिव्स अस सॉरी डेमी गॉड्स गिव्स अस, जो हम चाहते हैं वो हमें देवी देवता देते हैं, लेकिन जिसकी हमें जरूरत है उसको भगवान देते हैं. वॉट एवर वी नीड दैट कृष्णा गिव्स अस. ये स्पेशलिटी है. बच्चे बचपन में चाहे कितने भी जिद करें, माँ बाप को पता है कि चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं ना, तो इसलिए वो मना करते हैं बच्चों को खाने के लिए, नहीं खाने देते जल्दी. दैट कृष्णा डज इट. पर डिवोट इज लाइक हमारी बिजनेस मेंटेलिटी है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया है यहां पर. इट इज नॉट लाइक डेमी गॉड्स को हम क्रिटिसाइज करते हैं. इवन भरत महाराज तो चींटी को भी बचा करके चल रहे हैं, एक छोटी सी जीवात्मा है. जड़ भरत के रूप में जब जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं कि एक चींटी को भी बचा करके चल रहे हैं, राजा की पालकी उठा रहे हैं, तो कि वो भी मेरे पैर के नीचे ना जाए. सो हाउ कैसे डिवोटी जो है वो डेमी गॉड्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? हम कभी क्रिटिसाइज नहीं करते किसी को, परंतु किसको हम क्रिटिसाइज करते हैं? जो हमारी बिजनेस मेंटेलिटी है, इसमें डेमी गॉड्स का कसूर नहीं, हमारी अपनी बिजनेस मेंटेलिटी है, उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं. तो हमारे शास्त्र इसी तरह से जो है, हमारे वेदा जो है इसमें डिवाइड किए गए हैं, उसमें तरह तरह के कर्म कांड है, लेकिन हमारा एडवांसमेंट हुए धीरे धीरे इसके कारण से उसको सैंडविच की तरह बिल्कुल बनाया गया है. जैसे कि आप देखें अगर डेमी गॉड्स में गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, कहीं पे भी कुछ भी कार्य होगा सबसे पहले गणेश जी का पूजन आता है कर्मकांड के अकॉर्डिंगली. हाँ, तो गणेश जी जो हैं उनको बोला जाता है कि सर्व विघ्न विनाशक हैं, सर्व कार्येषु सर्वदा. मैरिज होती है ना, किसी के कार्ड के ऊपर लिखा होता है, तो सारे विघ्नों के विनाशक हैं. तो पंडित जी घर पे बुलाते हैं हम जब कर्मकांडी ब्राह्मण को, सबसे पहले वो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा करते हैं, लेकिन उससे पहले भी क्या करते हैं, किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया हो, सबसे पहले आचमन होता है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः. शायद वो धीरे बोलते हैं, लेकिन जब भी वो जल से आचमन करते हैं, हाथ धोते हैं, जल पीते हैं, तो इसी तरह से बोलते हैं. और उसके बाद वो गणेश जी की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के बाद क्या होता है कि मैं जो भी मैंने कार्य किया है सबको विष्णु को समर्पित किया जाए, नारायण को समर्पित किया जाए, नारायणम समर्पितम तुभ्यम. शायद कभी आपने अगर ध्यान से सुना होगा, चाहे घर में किसी भी तरह की कथा हो, ये दो श्लोक जरूर बोले जाते हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में. इस तरह ये सैंडविच है, बिल्कुल बेस जो है वो बहुत मजबूत है साइडों के ब्रेड की तरह, और बीच में क्रीम भरी हुई है आपको दिखाने के लिए, ललचाने के लिए केवल. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डेमी गॉड्स की पोजीशन क्या है. और स्वयं डेमी गॉड्स आप देखें तो वो भी सब जानते हैं इसको. महाभारत किसने लिखी आपको पता है? हाँ, किसने लिखी थी बताइए? व्यासदेव बोल रहे थे, लेकिन उनको कोई राइटर चाहिए था. हाँ, तो गणेश जी को चूज किया गया. पर गणेश जी ने एक शर्त रखी. गणेश जी ने बोला, क्या बोला था, कि आप श्लोक कंटिन्यू बोलते रहना, जैसे ही आप चुप हो गए मैं लिखना बंद कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं कलम नहीं उठाऊंगा, मेरी कलम नहीं बंद होनी चाहिए. तो व्यास जी ब्राह्मण थे, व्यासदेव जी ना बहुत चतुर थे वो. उन्होंने क्या कहा, ठीक है आपकी शर्त मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है, जो भी मैं बोलूं उसको पहले आपको समझना है फिर लिखना है. तो व्यासदेव जी कठिन से कठिन श्लोक बोल रहे हैं, और गणेश जी जब तक समझने का प्रयास करते हैं तब तक एक नया श्लोक आ जाता है. तो इस तरह से पूरी महाभारत गणेश जी ने लिखी है, पूरी महाभारत गणेश जी ने लिखी है, और उसमें ही आ रहा है ये सारे श्लोक. आप क्या सोचते हैं, क्या गणेश जी को समझ में नहीं आया होगा? ये वो जानते हैं रियलिटी को कि वी आर द सर्वेंट्स. मंगलवार के दिन हनुमान जी के जाकर के और बर्फी लेकर के या बूंदी लेकर के मुंह में ऐसे चिपकाते हैं ब्राह्मण लोग हैं, वहां पे पंडित जो होते हैं. आप क्या सोचते हैं बहुत छोटे मोटे भक्त हैं? हाँ, हम भगवान को बिना ऑफर किए कुछ भी नहीं खाते क्या? हनुमान जी जो परम भक्त हैं, हाँ वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, क्या वो कुछ खा सकते हैं भगवान राम को ऑफर किए बिना? क्या सोचते हैं आप, पॉसिबल है? हाँ, तो ये हमारी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन है जो हम इस तरह से सोचते हैं. तो ये डिफरेंस है। तो हमारी अपनी मेंटालिटी खराब है, बल्कि देवताओं को अप्रोच करना गंदा नहीं है, पर अप्रोच करने का तरीका होना चाहिए। वो अप्रोचेबल वे क्या है? अगर आपका किसी के ऊपर फेथ भी है पूरी तरह से, तो क्या करना है हमने? हमने उनसे अप्रोच करनी है। आई एम द फूल नंबर वन, मैं बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हूं, कुछ भी नहीं जानता हूं, और मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता हूं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, आप उनसे प्रेयर करिए, आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में हाँ आप कृष्ण भक्त बन जाएंगे। बहुत से लोग शिव जी को जो है भगवान मानते हैं, बहुत से लोग ब्रह्मा को भगवान मानते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, शिव जी स्वयं पार्वती को सुना रहे हैं कथा, भागवतम की कथा सुना रहे हैं, और एक तोता बैठा हुआ साइड में सुन रहा है, पार्वती जी सो रही हैं, तो हूं कर रहा है वो। तो शिव जी जब देखते हैं हाँ, तो कहते हैं अरे पार्वती तो सो रही है, हूं कौन कर रहा है? तो देखते हैं तो तोता है, तो उसको पीछे भागते हैं उसको मारने के लिए, हाँ कि मेरे को मूर्ख बना रहा था। तो भागता है वो और जाकर के व्यास देव जी की वाइफ के गर्भ में घुस जाते हैं। 14 साल बाहर आते हैं सुखदेव गोस्वामी, और जब वो भागवतम सुनाते हैं तो कितनी मधुर होती है। और पार्वती जी पूछ रही हैं शिव से उसी भागवतम कथा में कि भगवान सारा संसार आप पर ध्यान लगाता है, आप किसका ध्यान लगाते हो? हाँ, तो भगवान शिव जी क्या बोलते हैं? राम राम रमेति रामे रमन मनोरमे, हाँ मेरे तो इष्ट भगवान राम है जिन पे मैं दिन भर ध्यान लगाता हूं, और काशी में यदि कोई शरीर छोड़ता है तो स्वयं मैं जाता हूं वहां पर और उनके कानों में राम का नाम लेता हूं, ताकि उसकी उसके कान से मुक्ति मिलती है उसको। स्वयं शिव जी बोल रहे हैं। तो हमें बहुत ही क्लियरली डेमीगॉड्स की पोजीशन समझना पड़ेगा, और साथ ही में उनके प्रति कोई अपराध भी नहीं करना है, क्योंकि वो भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट है ना, अलग अलग राज्यों के अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं, पर फिर भी वो फाइनली रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं। हाँ, सारे के सारे कंट्रोल्ड हैं। तो इस तरह से भगवान ने भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बना रखे हैं। 33 करोड़ देवी एंड देवता हैं, वायुदेव एयर डिपार्टमेंट है उनके पास। हमारी बॉडी में पता है आपको सारी चीजें विद्यमान है, 33 करोड़ देवी देवता इसको कंट्रोल करते हैं, इस बॉडी को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर्स। एक भी अगर इधर से उधर हो जाए तो आप अपना हाथ नहीं उठा सकते, एकदम कंट्रोल्ड है। तो ये डेमी गॉड्स का कार्य है, तो हमें उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, बिकॉज ऑफ देम ओनली, उनके कारण ही हम जो है अपने हाथ पैर हिला पा रहे हैं, अपने आप से चल पा रहे हैं। लेकिन साथ में ही हमें पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, यह हमें क्लियर पता होना चाहिए। तो इसमें आगे बता रहे हैं, वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। जैसे हमने बताया कि डेमी गॉड्स भी जो है क्या है, जीवात्मा है, उनकी भी मृत्यु निश्चित है। इवन ब्रह्मा जी का जो है कार्यकाल बताया गया है, हाँ 100 वर्ष तक जिएंगे, हमारे 100 वर्ष नहीं है वो, डोंट वरी, ब्रह्म लोक में एक अलग 100 वर्ष होते हैं। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, भगवद गीता में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, बताएं आपको क्या दिया है। कलयुग की एज है 43,20,000 साल, त्रेता युग है 8 लाख, तो सॉरी 4,32,000 साल है कलयुग की एज, त्रेता है 8,64,000 साल, द्वापर है 12,96,000 साल, और सतयुग है 17,28,000 साल। टोटल 43 लाख साल होते हैं लमसम। जब ये चतुर्युग जो है हाँ 71 टाइम्स ये पूरा युग बीतता है, तो ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं, इस तरह के वो 100 साल जीवित रहते हैं, तब महाप्रलय आती है। और जब 12 घंटे होते हैं तो सारी जीवात्माएं सुप्तावस्था में चली जाती हैं, और मॉर्निंग होती है तो फिर से वो बाहर आती हैं, तो छोटी प्रलय होती है जब ब्रह्मा सोते हैं, तब इस तरह से 100 साल बीतते हैं, और 100 साल बाद ब्रह्मा का पोस्ट चेंज होता है। ये सारी पोस्ट हैं, इट इज नॉट लाइक अ पर्सन, ये सब पोस्ट हैं, ये सब चेंज होती हैं। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने एकला है ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य है, हाँ भगवान तो केवल एक ही है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम विद्धातु कामान। भगवान केवल एक ही है, जीवात्माएं बहुत सारी हैं, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, तो इसीलिए जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, क्योंकि अंश हैं हम भगवान के, तो हमारा कार्य है उनकी सेवा में लगना, तभी हम किसी तरह से सेटिस्फाइड हो सकते हैं, वरना कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। चाहे वो टाटा बिरला की तरह बड़े बड़े व्यक्ति हो जाए, चाहे वो अंबानी ग्रुप्स के लोग हों, आपस में ही लड़ रहे हैं दोनों भाई, करोड़ों रुपए है, सात पुश्तें घर में बैठ के खा सकती हैं, न्यूज़पेपर में निकला था उनका एक दिन का उनके घर में नौकरों का खर्चा 2.5 लाख रुपए है, सोचिए, पर फिर भी वो प्रसन्न नहीं है, दिन भागा दौड़ी करते रहते हैं बेचारे, सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम भी उसी तरह से भाग रहे हैं, शायद यहां सेटिस्फाई हो जाए, मृग तृष्णा, मृग की तरह दूर रेगिस्तान में दिखाई दे रहा है, धूप पड़ रही तो दिखाई दे रहा है पानी है, जब तक वहां पहुंचते हैं तो धूप और दूर दिखाई दे रही है, अरे वहां है अभी मैं इतना देर पहुंच नहीं पाया, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते भी जा रहे हैं, मटेरियल एडवांसमेंट भी हो रही है मगर सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये डेमिगॉड्स हमें यही देते हैं और हम यही चाहते रहते हैं बस, कि 2 रुपए का नोट चढ़ाऊं और 2000 रुपए वापस पाऊं, हमारी केवल यही धारणा रहती है, बिजनेस मेंटेलिटी रहती है हमेशा। तो आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं, ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं, वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम ईश्वर एक है, ईश्वरा परमम कृष्णा, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे हमने बताया था कि एक राज्य को चलाने के लिए एक छोटे लेवल पे भी लोगों की आवश्यकता होती है, पर फाइनली कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो इसी तरह से जो है डेमीगॉड्स को भी जो है पोजीशंस दी गई हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट। और आगे बताते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। सोचिए, पाखंडी कहलाता है वो डायरेक्टली, पाखंडी। पाखंडी का मीनिंग क्या होता है, जिसको जो दूसरे को बेवकूफ बना रहा है, पर मोस्ट ऑफ द पर्सन जो ज्यादातर लोग हैं वो इग्नोरेंट में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है खुद ही, थोड़ा बहुत जो इधर उधर से सुना उन्होंने बोल दी। लेकिन भगवान के लिए क्या बताया गया, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो भी आपको डेमीगॉड्स दे रहे हैं वो तो इस जैसे ही आपका शरीर खत्म होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वो मटेरियल है, आप मटेरियल चीजें चाहते हैं, हाँ ये भी चाहिए, ये भी सुख चाहिए, वो भी सुख चाहिए, ठीक है लो, लेकिन भगवद गीता क्या बताती है कि भगवान की तरफ अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ाया है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, छोटा सा भी अगर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है, त्रायते महतो भयात, बड़े बड़े भयानक जो है आपको कह सकते हैं प्रॉब्लम से बचा सकता है। जैसे कि भागवतम में अजामिल का स्टोरी आता है, किस किस को पता है अजामिल की स्टोरी के बारे में, कम लोगों को पता है। तो अजामिल एक ब्राह्मण का पुत्र था, उसने 16 साल तक ब्राह्मणत्व की पूरी प्रैक्टिस करी थी जबरदस्त, और क्या हुआ, समावदर्श वो जंगल से लकड़ी काटने के लिए गया था और उसने एक वैश्या को देखा एक पुरुष के साथ संभोग करते हुए, और उसकी सेंसेस जो इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से क्या हुई, आकर्षित हो गई, और वहीं पे वो घर ही वापस लौट के नहीं गया, और वहीं जंगल में उसने कुटिया बनाई और उस वैश्या के साथ रहने लगा और यौन सुख का आनंद लेने लगा। एक दिन क्या होता है कि कुछ वैष्णव साधु लोग जो है वो रात्रि में उधर से गुजर रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वहां पे जो है देखते हैं कि अंधेरा हो गया है और जगह ढूंढ रहे होते हैं कि कहां रुकें, तो उन्हें वो कुटिया दिखाई देती है और उनके पास आकर के खटखटाते हैं कि हमें रात के लिए विश्राम की जगह मिल जाएगी। क्योंकि वो ब्राह्मण था तो उसके अंदर सारी क्वालिटीज थी, अगर आपने एक बार भी कुछ ऐसा कार्य किया है अपनी लाइफ में तो क्या रहता है, वो स्टोर हो जाता है सब कॉन्शियसनेस में और वो समय आने पर वो जरूर बाहर आता है। तो उसने क्या किया कि इमीडिएट जो है उनको अंदर बुलाया, हाँ, और उनका बड़ा सत्कार किया और अपनी जो वैश्य थी उसको बोला कि तू जाकर के इनके लिए खाना बना, तो रात्रि भर कीर्तन करते रहे वो साधु संत, और इन्होंने उसकी बड़ा अच्छे से आदर सत्कार किया, हाँ, और इनको प्रसाद खिलाया और सब कुछ किया, तो बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, और जाते जाते बोले कि तुम अपने जो है पुत्र का नाम नारायण रखना। तो तब तक अजामिल के कई सारे पुत्र पुत्रियां हो गए थे। तो जो बाद में एक पुत्र हुआ, जो सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। जब अंत समय आया अजामिल का, तो क्या हुआ, क्योंकि उसने इतने गलत कार्य किए थे, यमदूत उसको लेने के लिए आए। उसने ब्राह्मणत्व का कार्य किया था, पर वैष्णव नहीं बना था, क्योंकि उसने हरि नाम नहीं लिया था, इसलिए उसको यमदूत लेने के लिए आते हैं। आपने, आपको पता है, यमदूत के दर्शन हो जाए जिसको, उसकी हालत खराब हो जाती है, बहुत डरावने होते हैं वो। भागवतम में इसका वर्णन दिया गया है, हाँ, कि कैसे डरावने होते हैं। तो वो देख करके बुरी तरह डर गया, और खटिया जोर से पकड़ ली, खाट जो होती है ना जहां लेटा था, जोर से पकड़ लिया, और जोर जोर चिल्लाने लगा, नारायण नारायण बचाओ, क्योंकि बहुत अटैच था अपने छोटे पुत्र से, बहुत अफेक्शनेट पुत्र था उसका वो। मोस्टली यही होता है कि जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है उससे सब लोग बहुत अटैच होते हैं। नारायण नारायण बचाओ, तो अचानक क्या होता है, विष्णु दूत आ जाते हैं, इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है, तुम इसको ले जा नहीं सकते। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, एक छोटी सी उसने सेवा की थी ब्राह्मणों की, वैष्णवों की, इतने बड़े वो जो है प्रॉब्लम से बच गया। और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ फिर से ह्यूमन बीइंग का मिला। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी भक्ति करी आगे की, जहां तक उसने छोड़ा था। हाँ, तो भगवान बोलते हैं इसको, हाँ, कि जिस पोजीशन पे आपने भक्ति की है, मेटेरियल चीजें तो नष्ट हो जाएंगी, जो भी आपने गेन किया है, आज आप बहुत बड़े प्रोफेसर हो या कुछ भी हो, लेकिन जब आप दोबारा बर्थ होगा आपका, आपने बहुत पीएचडी करी थी, लेकिन जब दोबारा बर्थ होगा तो फिर से एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, KG 1 में जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, लेकिन भगवान के जो भक्ति है उसका अकाउंट बैलेंस जो है क्या होता है, हाँ, वो कभी जो है खत्म नहीं होता। आपने भी इस जन्म में बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, तो क्या करेंगे, आप खत्म हो गए तो आप दोबारा वो सिग्नेचर नहीं चला सकते अपने, है ना, तो आपके बच्चे भोगेंगे और लोग भोगेंगे, लेकिन जो ये अकाउंट बैलेंस है इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं चलता, पाप अलग रहते हैं पुण्य अलग रहते हैं, और अकर्म जो है, जो भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं, उनका लेखा जोखा पूरा रहता है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जब आपका न्यू बर्थ होगा तो आप वहीं से भक्ति स्टार्ट करेंगे। इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज, छोटी सी अवस्था में ही उन्होंने जो है 5 वर्ष की आयु में जो है भक्ति स्टार्ट कर दी थी, स्टूडेंट्स को है जो पढ़ाने लगे, तो उन्होंने ऐसे पुराने जन्मों में सुकृतियां इकट्ठी कर रखी थी। इस्कॉन भी ये प्रयास कर रहा है, जगह जगह जाकर के रथ यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, क्योंकि लोग मंदिर आना नहीं चाहते। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि कलयुग में मैं घर घर जाऊंगा सबको हरि नाम करवाने के लिए। हाँ, तो इसलिए जगन्नाथ जी जो है रोड पे जाते हैं, लोग कहते हैं बहुत शोर हो रहा है, अपनी खिड़कियां बंद कर लेंगे, पर इतना शोर मचाते हैं भक्त की खिड़कियों के अंदर भी आवाज पहुंच जाती है कानों में, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र की। तो इस तरह से सुकृति दे रहे हैं उनको कि सम आओ दर्श, किसी ना किसी तरह उनके कानों में हरि नाम जाए, हरि नाम की महिमा बहुत बड़ी है। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि शुद्ध भक्ति क्या है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी तोई। कोई भी कामना नहीं है, क्या कामना है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मुक्ति की भी कामना नहीं है मुझे। अगर आप मुझे बर्थ देना भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बर्थ आफ्टर बर्थ आई वॉन्ट टू सर्व यू, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं विदाउट एनी मोटिवेशन, अहेतु की, ये शुद्ध भक्ति है। प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, ये भक्ति है। पर ये इतना जो है इजी नहीं है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, इतना इजी नहीं है कि अपना, भक्ति विनोद ठाकुर एक सॉन्ग में गाते हैं, हमारे एक आचार्य हुए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर एक सॉन्ग में आते हैं, मानस देह गेहो जे किछु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। हाँ, मेरा मन, मेरा शरीर और मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है सब कुछ है, आपको सब समर्पित कर दूं, अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर। आदमी सब कुछ दे देता है, अपनी देह भी दे देता है, प्रॉपर्टी भी देता है, पर मन को देना बहुत मुश्किल कार्य है। जो जन्म जन्मांतरों से हमारे ऊपर जो फॉल्स ईगो जो है, हमारी हाई है, जो हमारा अहंकार हमारे अंदर भरा हुआ है, उसको जो है छोड़ना बहुत मुश्किल है। वो कैसे आएगा? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सिखाय शरणागति भक्ते रप्राणा। शरणागति कैसे आएगी? वो सिखाई जाएगी वैष्णवों के द्वारा। जब आप किसी का आश्रय लेंगे, किसी वैष्णव का, किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेंगे जो ऑलरेडी इन बंधनों से मुक्त है या उस लाइन में है, प्रैक्टिस कर रहा है इन सब चीजों की, वो आपको बता सकता है, क्योंकि वो विद रियलाइजेशन बोलेगा। हाँ, क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि एक बहुत बड़े साधु थे, तो बड़े चमत्कारी बाबा थे वो, तो लोगों की बीमारियां दूर कर रहे थे सिर पे हाथ रख रख के। हाँ, तो क्या हुआ कि गांव में एक आए घूमते घामते वो, और बैठ गए एक चबूतरे पे, और उन्होंने कई लोग, उनकी मशहूर हो गए सब जगह गांव में दूर दूर तक। तो बड़े दूर से एक स्त्री आई अपने बच्चे को लेकर के, सुबह चली बेचारी, दोपहर में पहुंची और लाइन लगाई। जब बाबा जी के पास नंबर आया तो उसने बोला कि बाबा जी मेरा बच्चा चीनी बहुत खाता है, शक्कर बहुत खाता है, इसकी वो छुड़वानी है। तो बाबा जी देखते हैं बच्चे को बहुत प्रेम से और बोलते हैं इसको अगले हफ्ते लाना। ठीक है, कोई बात नहीं। वो स्त्री चली गई, उसने सोचा शायद कुछ रहा होगा, इनके पास अभी मेडिसिन नहीं है उस चीज़ की, तो ठीक है नेक्स्ट वीक लाएंगे। तो नेक्स्ट वीक आई बेचारी, फिर से सुबह दौड़ी दौड़ी, उसका नंबर आया तो बाबा जी से बोली कि बाबा जी ये शक्कर बहुत खाता है, इसकी शक्कर छुड़वा दो। तो क्या करा उन्होंने, उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा, बोले बेटा कल से जो है चीनी मत खाना। उसको बहुत तेज गुस्सा आया उस स्त्री को, बोली आपको अगर इतनी सी बात बोलनी थी तो आपने उसी दिन क्यों नहीं बोल दी, मैं इतनी दूर से आ रही हूँ। तो बाबा जी साधु बोलते हैं कि मैं कैसे बोल सकता था, क्योंकि उन दिनों मैं भी शक्कर बहुत खा रहा था, तो जो चीज मैं कर रहा हूं अगर मैं बोलूंगा भी तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ मेरे अंदर चेंज नहीं आएगा। तो आचार ही प्रचार है। योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर स्पीच। आप जो आचरण करते हैं उसको देख करके लोग अपने आप जो है अट्रैक्ट होते हैं, आपकी ह्यूमिलिटी को देख करके, आपके अंदर जो ब्राह्मणत्व के गुण हैं उनको देख करके, उसके कारण से लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे और अपने आप आएंगे आपके पास पूछने के लिए कि कैसे एडवांसमेंट होए, कैसे हम ये गुण अपने अंदर लाएं। ये भक्ति का प्रमुख लक्षण है। तो ये वैष्णव सदाचार है। ये क्या है? ये वैष्णवों का आभूषण है। हम लोग सोने चांदी नहीं पहनते हैं, केवल यही एक आभूषण है हमारे पास। तो हमें प्रयास करना चाहिए इसका, प्रैक्टिस करने का। कैसे आएगा? जो लोग ऑलरेडी इसको जो है फॉलो कर रहे हैं उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये विधि है, उनकी सर्विस में एंगेज होएं, फिर अपने आप ये सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। आपको आइडिया भी नहीं है, आइडिया भी नहीं होगा, पता भी नहीं लगेगा बिल्कुल। दिस इज वेरी सबल प्रोसेस, बहुत सबलाइम प्रोसेस है ये। आपने कुछ खाया, आपको नहीं पता पेट में कैसे अंदर क्या एसिड किसको कैसे गला रहे हैं, कहां से क्या हो रहा है उस खाने के साथ में, कैसे वो स्टूल बन रहा है, कैसे बॉडी में पावर आ रही है, लेकिन आप फील कर रहे हो, है ना? दैट इज सबलाइम फेथ। ये हमें करना पड़ेगा, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये पॉसिबिलिटीज है। तो ये भक्ति का जो है पहला जो है अंग है अपने अंदर ह्यूमिलिटी डेवलप करना। तद विधि प्रणिपातेन, आप अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको किसी वैष्णव की शरण लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा, एक सर्वेंट की तरह एक्ट करना पड़ेगा। पर हमने जैसे बताया कि फॉल्स ईगो इज वेरी हाई, हमारा अहंकार इतना हाई है कि हम किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहते, और इसमें हमारी गलती नहीं है क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं है। हाँ, हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। जैसे आगे वाले श्लोक में मुझे बताया गया था कि आगे तीन श्लोक का जोर लेने साथ में, तो आगे वाले श्लोक बोले हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशा। चार वर्ण और चार आश्रम जो हैं गुण और कर्मों के आधार पर विभाजित हैं। तो आजकल तो बच्चे जो हैं थोड़े से बड़े होते हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं तभी उनको सिखा देता है, बेटा तू डॉक्टर बनेगा, है ना। अब सिखा दिया उसको, अब वो बेचारा मेहनत कर रहा है, हो सकता है उसका जो है अट्रैक्शन उस तरफ नहीं हो, हो सकता है उसकी मेंटेलिटी वैसी नहीं हो, परंतु उसको जबरदस्ती उसके साथ की जा रही है और उसने भी ठान ली अब तो मैं बन के दिखाऊंगा। तो क्या होता है उसे, आजकल जितने भी जो आपको सुसाइड केस मिल रहे हैं लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, केवल यही कारण है। परंतु पहले ऐसा नहीं था, पहले बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, वहां पे गुरु जो है गुरु के साथ रह करके वो 8, 10 साल, 12 साल सेवा करते थे, तब गुरु डिसाइड करता था इसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, इसको कैसी शिक्षा ज्यादा देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान ज्यादा ग्रैप्स कर सकता है तो वो ब्राह्मण की क्वालिटीज उसको सिखाई जाती थी, यू हैव अ नॉलेज। इसलिए कोई शस्त्र विद्या में है तो उसको क्षत्रिय का उतना ही ज्यादा वो सिखाया जाता था, शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी, शस्त्र के जो क्षत्रियों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको वो सिखाए जाते थे। किसी का जो है बिजनेस में ज्यादा ध्यान लगता था तो उसको वैश्य के गुण में उसके अंदर जो है डाले जाते थे, उनको उस तरह से उनको जो है ट्रेंड किया जाता था। मगर अब ट्रेनिंग खत्म हो गई है, इसीलिए इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है लोगों के अंदर, क्योंकि शुरू से उनको समझा दिया जाता है ऐसा, बेटा तुझे ये बनना है, और जब वो नहीं बन पाता तो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, और बन भी जाता है तो वो लेस इंटेलिजेंस की तरह रहता है। समा ओदर्स उसने बहुत मेहनत किया, हालांकि उसका मन नहीं लग रहा, पर थ्योरेटिकल उसको बहुत नॉलेज हो गया, पढ़ता जा रहा है बेचारा, दिन रात पढ़ रहा है 18 घंटे 19 घंटे, उसको उसका हॉबी नहीं है, मगर उसको जो है उसको एक उसके माइंड में डाल दिया, इसलिए बेचारा पढ़ रहा है जबरदस्ती, हो सकता है वो पास भी कर ले। इतने सारे डिफ्रेंशिएट इसीलिए हैं कि कोई इंजीनियर है उसको 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है, कोई इंजीनियर है उसको 20,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था इतना, थ्योरेटिकली तो उसने पास कर लिया मगर प्रैक्टिकली वो कुछ भी नहीं कर पाया शायद उतना ज्यादा, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। तो इसीलिए आजकल जो है थोपा थोपी सिस्टम शुरू हो रहा है, मगर भगवान क्या कह रहे हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशा, गुण और कर्मों के आधार पर सब कुछ विभाजित किया जाता है। ब्राह्मण्स के गुण बताए गए हैं भगवद गीता 18th चैप्टर में, डिफरेंट डिफरेंट गुणों का वर्णन है, आप देख सकते हैं 18th चैप्टर 42 वर्स है, ब्राह्मण्स के गुण है, क्षत्रिय के गुण है 43 में और 44 में वैश्य और शूद्र दोनों के गुण है, क्या क्या होना चाहिए, शौच क्षमा दया, ये सब कुछ बताया गया है ब्राह्मण्स के गुण। तो इस्कॉन ऐसी संस्था है जो ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण बनाने का प्रयास कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है इस तरह से लोगों को, क्योंकि आजकल जो है ब्राह्मण क्लास की कमी है समाज के अंदर, लेस इंटेलिजेंस बढ़ते ही जा रहे हैं, जो क्या चाहते हैं इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं, भगवान बोल रहे हैं ना इसमें सिद्धि करना, निस्संदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हम जॉब क्यों करते हैं, महीने के लास्ट में हमें सैलरी मिलेगी, है ना, इसीलिए जॉब करते हैं हम, वो हमारा हॉबी नहीं है, वो शौक नहीं है हमारा, पर क्यों करते हैं कि हमें महीने के लास्ट में सैलरी मिलेगी, और वो बहुत पास दिखाई देता है, पक्का है वो मिलेगी, क्योंकि महीने तो भर तक हम कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता, भक्ति में आपको 3 चीजें हमेशा रखनी पड़ेंगी अपने पास, उत्साह निश्चय और धैर्य, सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंड है। हमेशा एंथुजियास्टिक रहना है भक्ति में, उत्साहित रहना है हमें, हमको पता होना चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उससे भगवान बहुत प्रसन्न है, क्योंकि भगवान स्वयं शास्त्रों में इसके विधि बता रहे हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई सेंटिमेंटल प्रोसेस नहीं है, वेरी क्लियर इट इज रिटन 17th चैप्टर के 23rd वर्स में प्रभुपाद पर्पट में बताते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज साइंटिफिक एग्जीक्यूशन, टू ट्रेन ए सोल वैज्ञानिक कार्यान्वयन है ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज का, क्या कि जो सोल को ट्रेंड करते हैं, आत्मा को ट्रेंड करते हैं कि वो भगवत धाम वापस जा सके इसके लिए। तो ये कोई जो है, साइंस का मीनिंग क्या होता है, विज्ञान का, आजकल जितना भी आप सुन रहे हैं सब ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। हाँ, आपके पास फॉर्मूला है H2O, हाइड्रोजन का एक अणु मिलाइए, ऑक्सीजन के दो अणु मिलाइए और पानी बन जाएगा। फिर इतनी कमी क्यों है पानी की? हाँ, जमीनों में पानी का स्तर नीचे जाता जा रहा है। बना लो, पता है सबको फॉर्मूला, दैट इज नॉलेज, बट देर इज नो साइंस। हाँ, देर इज नो साइंस। साइंस मीन्स प्रैक्टिकल, दैट इज नॉट देयर, वो यहां पर अभी नहीं है। तो साइंस क्या है? साइंस क्या है? आपने बटन दबाया, पंखा चलना चाहिए। हाँ, दिस इज साइंस। आपने कोई एक्शन किया, हाँ, एवरी एक्शन विल गिव यू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का सिद्धांत है, मैंने नहीं बोला, पर एक्चुअली ये साइंस है। जो भी आप कार्य करते हैं उसका आपको जो है क्या मिलेगा? फल मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा? आपको उसको भगवान को समर्पित करते हुए चलना है बस। मतलब हर एक कार्य आपको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो कोई भी एक्टिविटी आपको चेंज नहीं करनी है अपनी लाइफ में, केवल हरि नाम को जोड़ना है बस, इतना कार्य करना है। जैसे ही अपनी लाइफ में आप हरि नाम को जोड़ लेंगे, आप देखेंगे अपने आप चेंज आने लगे हैं। हाँ, जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है ना, बीमार व्यक्ति होता है जो डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है, तो हम सब बीमार हैं। पापा सेड दिस इज स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, हाँ, ये आध्यात्मिक अस्पताल है जहां पे सारे बीमार आते हैं। हाँ, और यहां पे उनका इलाज होता है। क्या मेडिसिन दी जाती है? हरी नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, और संग में क्या लेना है? डाइट लेनी है। वो डाइट क्या है? हाँ, मान लीजिए आपको क्या है कि मान लीजिए आपको जो है क्या बोलते हैं, जॉन्डिस हो गया है मान लीजिए। हाँ, तो क्या होगा? आपको मीठी चीज भी कड़वी लगेगी, है ना? तो इसलिए क्या बोलते हैं, गन्ने का जूस पियो। गन्ने का जूस आप पियोगे वो कड़वा लगेगा, फिर भी डॉक्टर बोलता है नहीं पियो। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब हमारी बीमारी क्योर होने लगती है तो वो जूस हमारी बीमारी को भी क्योर कर रहा है। हाँ, और मीठा भी है, लेकिन उस समय कड़वा लग रहा है, लेकिन एक समय के बाद वो मीठा लगने लगेगा, और वही केवल एक मेडिसिन है उसकी। हाँ, और डाइट क्या है? आपको पीली चीजें नहीं खानी है, मना करते हैं ना, पीलिया हो जाता है, तो येल्लो चीजें बिल्कुल मत खाइए। तो इस तरह से भक्ति में क्या है, आपका मेडिसिन है हरि नाम, और डाइट है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हाँ, भक्तों का संग लेना, इससे आपका फेथ बढ़ता रहेगा, वरना आप हरि नाम नहीं कर सकते। इसीलिए बोला महाप्रभु ने, कलयुगेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। केवल कीर्तन नहीं करना है, संग में रह के कीर्तन करना है। संकीर्तन है ये, संकीर्तन मोमेंट है। यही केवल आपको प्रेम दे सकता है, और कुछ भी नहीं दे सकता। सतयुग में जो विधि थी वो क्या थी? तपस्या करिए। विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या करी थी। हमारी उम्र कितनी है? 60 साल भी मुश्किल से हो पाती है, उसमें ही पैर जो है बोलने लगते हैं, घुटने, आंखें रुंधा जाती हैं, दिखाई देना बंद हो जाता है। तो तपस्या आप इस एज में नहीं कर सकते। त्रेता युग में क्या था? यज्ञ करते थे। आज ना तो प्योर दूध है, ना प्योर घी है, ना प्योर शहद है, क्या यज्ञ करेंगे आप? द्वापर युग में डिटी वर्शिप होती थी। ब्राह्मण लोग तरह तरह के मंत्रों के साथ जो है डिटी वर्शिप करते थे। हाँ, भगवान की सेवा करते थे वैकुंठ रूप में। हाँ, लक्ष्मी नारायण की सेवा होती थी। मगर आजकल ब्राह्मण ही नहीं बचे हैं। हाँ, ब्राह्मणों का कार्य यजन याजन पठन पाठन दान देना दान लेना, केवल तीन ही कार्य होते थे। 5 घर में भिक्षा मांगने जाते थे केवल, वो नहीं मिलता था तो बड़े सेटिस्फाइड रहते थे। कोई बात नहीं, आज प्रसाद नहीं मिला, कोई बात नहीं, भगवान की शायद ही इच्छा है। आजकल के ब्राह्मण बड़े मोटे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल्ड होता था उनके सेंसेस। तो आजकल आपको ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, तो आप ड्यूटी वर्शिप भी नहीं कर सकते ढंग से, और अगर कर भी पाए चीजें तो इसमें कोई कृष्ण प्रेम आपको नहीं मिलेगा। ये सारी सेवाएं जो है वैकुंठ रूप में होती थी, भगवान के लक्ष्मी नारायण की सेवा होती थी, वहां पे ऑबिडियंस रहती है हमेशा, लेकिन कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध होता है, इसीलिए प्रेम धन बोला गया है। तो हमारे एक आचार्य बोलते हैं कलयुग में दोष ही दोष हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा है, जो कृष्ण का प्रेम धन है बहुत इजीली प्राप्त हो जाता है, हाँ, केवल हरि नाम करने मात्र से। तो आपको अपनी लाइफ में जो है हरि नाम को जोड़ना है, बाकी गंदी आते हैं सब कुछ, बुरी चीजें अपने आप छूट जाएंगी, बस केवल इस एक्टिविटी को आपको अपनी लाइफ में उतारना है बस, और भक्तों का एसोसिएशन लेना है, उनकी शरणागति लेनी है, वो आपको सिखाएंगे कि कैसे भक्ति करनी है, उनको पता है भगवान को क्या पसंद है, हमें नहीं पता अभी, क्योंकि वो भगवान के करीब है हमसे ज्यादा, तो उनको पता है भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या नापसंद है। जब हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम जागृत होएगा, जैसे हमने बताया था जो उनके अंदर होगा वही वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, माइंड टू माइंड नहीं है, कि हम ज्ञान दे रहे हैं आपको और आप ज्ञान ले रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा, वाह बहुत कुछ सीखा आज प्रभु जी से, ऐसा नहीं है। प्रीचिंग इज हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, हृदय से हृदय का संबंध है, जो हमारे हृदय में वो आपके हृदय को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भक्ति है। तो भक्ति में ज्ञान की कोई महत्व नहीं है, कर्म कांड ज्ञान कांड सब साइड में होते हैं। तो वेदास में इसलिए दिया है कि जो अल्प मेधसा है, जो लेस इंटेलिजेंस पर्सन है, वो इस तरह से सुकृति इकट्ठी करें, सम अवधर्ज उन्हें छ चलो, कुछ ना कुछ चाहिए उन्हें, डेमीगॉड से भी चाहिए, पर आगे और पीछे उन्होंने श्लोक डाल दिए भगवान के, कभी तो इसको सद्बुद्धि मिलेगी। जैसे कि जो लोग तमोगुण में रहते हैं वो क्या करते हैं, बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं ना, सॉरी गाय की बलि देते हैं काली को, बकरे की बलि देते हैं, गाय की बलि देते हैं काली को अभी भी, पर उनको शास्त्र के अकॉर्डिंगली, काली पुराण के अकॉर्डिंगली उनको जो है एक श्लोक बोलना पड़ता है। उस श्लोक का मीनिंग क्या आपको पता है? संस्कृत में जरूर बोलते हैं, लेकिन उस श्लोक का मीनिंग है कि आज मैं तुम्हें काट रहा हूं, तुम्हें पूरा का पूरा अधिकार है कि अगले जन्म में तुम मेरा सर काट सकते हो। ये बोलते बोलते जब उनको रियलाइज होता है, हाँ, तो वो डरते हैं, फिर ये मैं क्या कर रहा हूं। तो इस तरह से शास्त्र में अलग अलग विधियां हैं धीरे धीरे अपग्रेड करने की। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है उसको आप 10th की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, हाँ, उसको उसके लेवल का ही देना होगा। तो इसीलिए 18 पुराणों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 6-6 पुराण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में, जो जिस लेवल का व्यक्ति है उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन किया जाता है, धीरे धीरे उठाया जाता है। लेकिन इससे ऊपर भी क्या है, भगवान की अहेतु की भक्ति है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसी तरह से जब डेमीगॉड्स की बात आती है तो इट इज जस्ट लाइक अ, भागवतम में एग्जाम्पल दिया, एक ट्री होता है, जैसे पेड़ है, हाँ, तो पेड़ का क्या है कि आप अब तक पत्तियों में पानी दे रहे हैं तो क्या होगा, उनका ग्रोथ होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन जब आप जड़ में पानी देंगे तो सारे के सारे लोग जो है, सारे पत्तियां और पूरा पेड़ अच्छे से ग्रो कर सकेगा। तो डोंट थिंक कि डेमीगॉड्स जो है अप्रसन्न हो जाएंगे, जो स्वयं जिनकी सेवा करते हैं, हाँ, जो स्वयं भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो अगर आपको भगवान की सेवा करते हुए देखेंगे तो और प्रसन्न होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, मान लीजिए आपके किसी कांस्टेबल से कांटेक्ट है, एक दिन आपके घर में जो है इंस्पेक्टर भी साथ में आता है कांस्टेबल के साथ में, आपके हाथ में एक माला है, आप किसको पहनाएंगे? हालांकि आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप कांस्टेबल से हैं, हाँ है ना, अगर आप पहनाना भी चाहेंगे कांस्टेबल को तो बोलेगा नहीं नहीं इनको पहनाइए, ये मेरे से सीनियर है, हाँ? ऐसा है ना। तो इसी तरह से डमी गॉड्स हैं, अगर आप भगवान की सेवा में लगेंगे तो और भी ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि वही कार्य वो भी कर रहे हैं, और भगवान भी जो स्वयं जो है वो मिश्रित भक्तों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, तो कभी भी मिश्रित भक्तों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, ये भी कर लूं और साथ साथ वो भी कर लूं, वो भगवान को पसंद नहीं है। जैसे कि आप रामायण में जब भगवान लौट करके आते हैं लंका से रावण का विदोहन करके, हाँ, और उनका राज्याभिषेक किया जाता है दोबारा, तो सारे देवी देवता इकट्ठे हैं, भगवान जहां पे अपने चरण रखे हुए हैं जिस आसन पे नीचे, वहां पे आकर के सब प्रणाम कर रहे हैं, हाँ, भगवान के को टच करने का किसी का साहस नहीं है लेकिन वहीं पे आके सब प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन भगवान का ध्यान किधर है? जो उनके मंकी डिवोटीज हैं, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उधर भगवान का पूरा ध्यान है, भगवान राम उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। या भगवान कृष्ण जो है जब वापस जा रहे हैं अपने धाम में, तो दो लोग मौजूद हैं वहां पे, मैत्रेय मुनि और उद्धव जी। तो दोनों लोग खड़े हैं लेकिन भगवान का सारा ध्यान उद्धव की तरफ है, मैत्रेय मुनि की तरफ वो नहीं देख रहे हैं, उद्धव की तरफ पूरा ध्यान है और उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन दोनों पूछ रहे हैं लेकिन इंस्ट्रक्शन वो उन्हीं को दे रहे हैं, केवल उद्धव जी को। तो भगवान का जो है, जो मिश्रित भक्त होते हैं उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। हाँ, तो इसीलिए हमें क्या करना है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा गुरु नंदना, एक व्यवसायी व्यक्ति की तरह बनना है। एक बिजनेसमैन होता ना, वो सुबह शाम सोते उठते जगते क्या सोचता रहता है, मैं कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ करूं, हमेशा उसका ध्यान वहीं रहता है बस। और भी कई सारे एक्टिविटी कर रहा है वो, अपने घर में भी आ रहा है, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, अपनी वाइफ का, बच्चों का भी ध्यान रख रहा है, और सोच वो उसी तरफ रहा है। हाँ, इसी तरह से हमारी बुद्धि क्या होनी चाहिए, उसी व्यवसाय की तरह होनी चाहिए। कहा गुरु नंदना, केवल भगवान कृष्ण होने चाहिए, और गोपियों का भी यही भाव था। हाँ, प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, उनको हमेशा स्मरण करना। हालांकि गोपियां अपने घर में अपनी वाइफ की, अपनी सास की सेवा कर रही हैं, खाना बना रही हैं, हाँ, लेकिन कृष्ण के बारे में सोच रही हैं। सोचिए क्या पोजीशन थी उनकी। जब भगवान जो है गऊओं को चरा करके आते थे, तो उनकी आते आते जेबें नहीं देखती थी, क्या लाए मेरे लिए देखूं, हाँ, जंगल से कोई फल फूल लाए हो नहीं मेरे लिए, नहीं देखती थी। वो तो दर्शन भी नहीं करना चाहती थी भगवान के, क्यों, क्योंकि वो सोचती थी इंद्रिय तृप्ति है, अगर मैं भगवान के सामने जाऊंगी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। हाँ, और ये इंद्रिय तृप्ति है क्योंकि मैं अपनी प्रसन्नता के लिए उनको देखना जा रही हूं। परंतु अगेन दोबारा उनके मन में क्या ख्याल आता है, अगर भगवान मेरे को देखेंगे वो कितने प्रसन्न होंगे, इसलिए वो सच संवर के भगवान के सामने जा रहे हैं। तो किस लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। और ये साइमल्टेनियसली चलता है, जब भगवान प्रसन्न होते तो उनकी प्रसन्नता देख करके गोपियां हजार गुना ज्यादा प्रसन्न हो रही हैं, और गोपियों की प्रसन्नता देख करके भगवान और हजार गुना प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये चलता ही रहता है, हाँ, ये सिलसिला चलता ही रहता है। फिर ये शुद्ध भक्ति है, हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। तो यहाँ पे जो स्पेशल डिस्कशन आया था वो यही बताया जा रहा है कि देवता की पूजा जो करते हैं वो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, हाँ, जो बिल्कुल नीचे के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, अभी कर्म कांड को फॉलो कर रहे हैं, और जब धीरे धीरे उनको सुकृति मिलेगी तो शायद वो कभी इस स्टेज पे आ पाएंगे कि शुद्ध भक्ति कर पाए। हाँ, भगवान भी भगवद गीता बोलते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हाँ, कर्म कांड से वो ज्ञान कांड में आएंगे और तब जाकर के कहीं वो शायद उपासना कांड में स्थित होंगे, और शायद फिर भी उन्हें शुद्ध भक्ति ना मिले। हाँ, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कई जन्म कोई एक बिरला होता है, कई जन्मों के बाद कोई एक बिरला होता है करोड़ों में से जो मेरे पास वापस आता है। हाँ, तो हमें वही बनने का प्रयास करना है। जैसे एक पिता के कई सारे पुत्र होते हैं, हाँ, मान लीजिए एक बहुत बड़ा व्यवसायी पिता है, उसके कई सारे पुत्र हैं, मगर एक ऐसा पुत्र जरूर होगा जिसपे वो पूरा ट्रस्ट करता है और उसको अपने खजाने की चाबी सौंपता है। हर किसी को नहीं देता वो बिजनेस कि तुम सब मिलकर करो, नहीं, एक ऐसा पुत्र जरूर होगा जिसपे वो पूरा ट्रस्ट करता है। तो हमें लव से भी ऊपर जाना है, ट्रस्ट वर्दी बनना है। पिता अपने सारे पुत्रों को प्रेम करता है उनमें से, मगर एक ऐसा होगा जो ट्रस्ट वर्दी होगा उसका। तो हमें उसी तरह से भगवान का ट्रस्ट वर्दी बनना है, ट्रस्ट वर्दी सर्वेंट, खाली सर्वेंट भी नहीं बनना है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस हरि नाम के द्वारा और भक्तों का आश्रय ग्रहण करके, हाँ, हम भगवत भक्ति में लग सकें। इसी से केवल हमारा जो है एम्बिशन, जो हमारे लाइफ का जो लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ट्राई टू बिकम ए ट्रस्ट वर्दी सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बताइए। अच्छा, हाँ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हुए हैं। माता जी आप बता सकते हैं सतयुग में किनका अवतरण हुआ है? प्रेम प्रिया माता जी, हाँ नरसिंह भगवान आए हैं हाँ प्रहलाद महाराज को प्रसन्न करने के लिए। हाँ ठीक है, युग अवतारी जो है, और कलयुग में कौन आए हैं? अभी तो युग अवतारी चैतन्य महाप्रभु हैं, शन अवतारी हैं, हर किसी को पता नहीं लगेगा महाप्रभु के बारे में। हाँ बहुत ही कम लोग होंगे जो इसका लाभ उठा पाएंगे पूरी तरह से। हाँ भगवान स्वयं बताते हैं भागवतम में कि कलयुग इतना पावरफुल है जिसकी सुकृति जो है बहुत कम धीरे धीरे इकट्ठी होगी लोगों की, और जिसके पास सुकृति फुल हो गई होगी वही आएगा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, महाप्रभु का आश्रय लेगा। इतना इजी नहीं है। हाँ हाँ सबलाइन फेथ का मतलब होता है, आप तो डीपीएस में ही पढ़ाती हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ डीपीएस का ही। मान लीजिए कि हर एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को डीपीएस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, क्यों? वो उसमें पढ़े तो नहीं है, हाँ वो रिजल्ट देख रहे हैं बाहर, कि उनका बच्चा जब वहां से पढ़ के निकलता है तो उसका एक रेपुटेशन होता है। हाँ दिल्ली दिल्ली में डीपीएस स्कूल में पढ़े हैं, एक रेपुटेशन होता है, और उसको बहुत हेल्प करता है वो आगे एडमिशन दिलाने में डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में। ये सबलाइम फेथ है, पेरेंट्स का सब्लाइम फेथ है कि मेरा बच्चा अगर डीपीएस में पढ़ेगा तो आगे जाकर के उसको अच्छा एडमिशन मिलेगा। हाँ उसको नहीं पता कि अंदर क्या पढ़ाई हो रही है। हाँ इसी तरह से सब्लाइम फेथ है, जब हम हरी नाम लेंगे तो अपने आप अंदर से चेंजेस आएंगे, क्योंकि हम रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ कि लोगों के भक्ति का मतलब है, जब कोई व्यक्ति भक्ति करे तो उसके अंदर दो चीजें आनी चाहिए, ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान हम मेटेरियल नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है भगवान के बारे में। ज्ञान और वैराग्य दो चीज आनी चाहिए, डिटैचमेंट एंड नॉलेज। और हम जब रिजल्ट देख रहे हैं यहां पे, हाँ कि कई सारे भक्त हैं जिनके अंदर ऑलरेडी ये चीजें आ रही हैं, इवन दे आर लिविंग इन अ गृहस्थ आश्रम। हम सब गृहस्थी हैं देखा जाए तो, इंक्लूडिंग मी। हाँ हम सब गृहस्थी हैं, उसके बाद भी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल कृष्ण को जोड़ने की जरूरत है, सारी बुरी चीजें अपने आप ही छोड़ के चली जाएंगी। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, डिटैचमेंट का मतलब है कि हमें मेटीरियल जो अटैचमेंट्स हैं वो धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे, और भगवान के प्रति आकर्षण हमारा बढ़ने लगेगा, ये सब चीज तुच्छ लगने लगेंगी। और ये क्यों होता है कि जब हम किसी के पास अगर लोअर चीज है, हाँ हम उसको मांगेंगे हमें दे दो, आपके पास एक पेन है मान लीजिए रेनॉल्ड का, मैं आपसे बोलूँ माता जी मैं पेन दे दिए फ्री में, आप नहीं देंगी। हाँ मैं एक पार्कर का पेन निकालता हूँ अपने पास से, आपको बोलता हूँ आप भी अपना रेनॉल्ड का दे दीजिए मुझे, मेरा पार्कर का पेन ले लीजिए, आप बोलोगे अच्छा बेवकूफ है अच्छा सौदा है, तो है ना। तो इसी तरह से जब हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट अपने आप जाने लगता है। आज कितने लोग इस समय मूवीज देख रहे होंगे, बहुत सारे पीवीआर सिनेमाज हैं यहाँ पे, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई और सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज कर रहा होगा। टीवी में इस समय बड़ा अच्छा सोनी पे नाटक आता होगा, कभी सास भी कभी बहू थी, हाँ कई लोग उसमें लगे हैं। आप लोग वो छोड़ के क्यों आए हैं? कुछ ना कुछ तो टेस्ट मिल रहा है ना यहाँ पे, तभी आए हैं। वो हायर टेस्ट मिल रहा है, उस लोअर टेस्ट को छोड़ के आए आप। तो इस तरह से जब आप हरि नाम को अपनी लाइफ में जोड़ेंगे तो धीरे धीरे जो है ये टेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, और भक्तों का एसोसिएशन लेंगे जो ऑलरेडी इस टेस्ट को जो है वो इसका टेस्ट ले रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग जब इनका एसोसिएशन लेंगे तो इस तरह से आप जो है आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। और किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट हैं अभी हमारे पास, नहीं तो फिर फिनिश करते हैं। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा था, प्रभुपाद अपने डिसाइपल से पूछते हैं कि अचानक ऐसे बैठे हैं, कई सारे डिसाइपल्स बैठे हैं प्रभुपाद के, फॉरिनर डिवोटीज जिनको कृष्ण के बारे में पहले कभी पता ही नहीं था, प्रभुपाद ने आकर के सब कुछ दिया। हाँ और वो आज ब्राह्मण्स थे, और प्रभुपाद अचानक पूछते हैं उन सन्यासी भक्तों से, व्हाई यू आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, तुम कृष्ण भावनामृत में क्यों? तो लोग डिफरेंट डिफरेंट आंसर देते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य क्या होता है? प्रभुपाद बिकॉज ऑफ यू ओनली, केवल आपके कारण हम आज कृष्ण भावना भावित हैं, हमें तो पता भी नहीं था कृष्ण कौन है। प्रभुपाद सेड नो, बोलते नहीं, बिकॉज ऑफ योर डिजायर, क्योंकि आपकी अपनी इच्छा थी कृष्ण भावनामृत में आने की, इसलिए आप कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते सुना था, ये यथामाम प्रपद्यंस्ते ताम तथा भजामे हम, जैसा आप मेरे प्रति भावना रखोगे वैसा ही पाओगे। हाँ, तो जैसी आपकी इच्छा होगी, आप ज्यादा से ज्यादा डिजायर करोगे भगवान का हरि नाम लेने का, आप देखेंगे कि आपके सारे सर्कमस्टेंसेस एकदम सही हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, आपको दिखाना पड़ेगा यू आर डिटरमाइंड। हमने बताया था उत्साह, निश्चय और धैर्य तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं। हाँ, तो उसमें निश्चय भी वर्ड है। आपको निश्चय निश्चित करना होगा अपने आप को कि नहीं, मुझे हरि नाम करना है किसी भी सर्कमस्टेंस में। हाँ, तब भगवान उसको देख करके बड़े प्रसन्न होंगे। और आप प्रेयर जब भगवान से साथ साथ करेंगे, वो बहुत जरूरी है। वंदना करना, प्रेयर्स करना भगवान से बहुत जरूरी है, उससे पर्सनल रिलेशनशिप बनता है। हाँ, जब आप वो प्रेयर्स करेंगे तो क्या होगा कि भगवान आपकी जरूर हेल्प करेंगे। दिस इज जस्ट लाइक अ न्यूट्रल। स्कूटर में जब आप न्यूट्रल कर देते हैं, फिर आप चाहे कितनी जोर भी उसके एक्सीलेटर खींचे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही आपने गियर डाला तो स्कूटर आगे बढ़ेगा, जितना आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे उतना आगे बढ़ेगा। क्लिच छोड़ते जाइए, सेकंड गियर, थर्ड गियर, तो ये आपके ऊपर है आप कौन सा गियर डालना चाहते हैं। वरना आप एक्सीलेटर खींचते रहिए, जब तक आप गियर नहीं डालेंगे वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, ठीक है, तो ये मेटेरियल एग्जाम्पल है। यस माता जी। हाँ, हम सभी हैं। हाँ, कोई बात नहीं, इनिशियल लेवल पे होता है, हमारी डिजायर्स बिल्कुल खत्म नहीं होती। तो भगवान क्या बोलते हैं, अकाम सर्व काबो मा, जो भी आपके डिजायर हैं डेमी गॉड से मत करिए, मेरे से करिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मैं उनको इस तरह से फुलफिल करूंगा कि आपकी सारी डिजायर ही ले लूंगा। फुलफिल करते हैं वो, ऐसा नहीं है। हाँ, मेटीरियल डिजायर्स को फुलफिल करते हैं, पर इस तरह से करते हैं कि फिर आपकी आगे जो और इच्छाएं जैसे बढ़नी थी। हाँ, जैसे हमने बताया था कि मृग तृष्णा होती है ना, तो वो नहीं रहती, आपको वो मिल भी गई है चीज। मान लीजिए आपने पुत्र प्राप्त करने की डिजायर करी, आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपका पूरा फेथ है कि भगवान इसको जरूर फुलफिल करेंगे। आपको मिल भी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन क्या होगा, उसके आगे आपकी और मेटेरियल डिजायर नहीं होंगी उससे रिलेटेड। वरना क्या होगा, आप डेमीगॉड्स के पास जाएंगे तो वो इस तरह से देंगे कि आपकी डिजायर और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। लेकिन भगवान बोलते हैं अकाम सर्व काम हो, कोई भी आपकी कामना हो, अकाम हो या कोई भी मेटेरियल डिजायर हो, आप मेरे पास आओ, मैं उसे फुलफिल करूंगा। पर यू हैव टू हैव फेथ अपॉन मी, मेरे ऊपर आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं है। हरि नाम भी एक्ट भी नहीं करेगा जब आप श्रद्धा नहीं होगी आपकी। नित्यानंद प्रभु फ्री में बांट रहे हैं हरि नाम को, क्या मूल्य है, केवल एक ही मूल्य, श्रद्धावान श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम शे हते टे बिकाए। बाजार खोल रखा है पूरा, सुरभि कुंजे ते नामे हट खोली छे। सुरभि कुंज में पूरा बाजार लगा रखा है हरि नाम का, आओ जिसके पास श्रद्धा है मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूं। मगर हमारे पास श्रद्धा नहीं, इसलिए हम वो भी नहीं लेते। शुद्ध नाम सोचिए, इतना पावरफुल है हरि नाम कि हमारी सारी डिजायर्स ले लेगा। पर डरिए मत, भगवान कम से कम 12 या 13 बार बोलते हैं भगवान भगवदगीता में, डरो मत। योगक्षेम वहम में हम, लाइफ इंश्योरेंस का स्लोगन नहीं है योगक्षेम वहम में हम, भागवतम में लिखा है। क्या लाइफ इंश्योर्ड करेंगे वो लाइफ जाने के बाद, भगवान इंश्योर्ड करते हैं योगक्षेम वहम में हम, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मतलब कि मैं तुम्हारी भक्ति की रक्षा करूंगा, डोंट वरी। प्रहलाद महाराज की भक्ति की रक्षा करी थी क्योंकि उनको पूरा फेथ था, बोला इस खंभे में भी भगवान है। उन्होंने बोल दिया थे या नहीं थे वो उसमें से निकले, क्योंकि उनको फेथ था इतना। उतना फेथ हमें रखना पड़ेगा, उतना स्ट्रांग फेथ। कितने लोगों का हमें उतना फेथ है, उतना ही फेथ रखना पड़ेगा, नहीं तो हरिनाम उतना एक्ट नहीं करेगा। जितना आपका श्रद्धा है उतना ही वो एक्ट करेगा हरिनाम। बताया यथा माम प्रबुद्धयन्स्ते, जितना आपने जौन सा गियर डाला है उतनी तेजी से गाड़ी दौड़ेगी, बस भगवान न्यूट्रल है। तो इस तरह से भक्ति का प्रमुख अंग है, हम जितना ज्यादा डिजायर करेंगे, भगवान जो है वह सबसे इजिएस्ट पर्सन है जो प्लीज हो जाते हैं, केवल इच्छा मात्र से। आपने बस उनको प्रसन्न करने की इच्छा करी और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, हम वो इच्छा ही नहीं करते। वेरी इजिएस्ट पर्सन टू प्लीज, तो प्रॉब्लम हमारे साथ है, प्रोसेस के साथ नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि मैं इतने टाइम से हरि नाम कर रहा हूं कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हाँ वो सोचते हैं प्रोसेस खराब है, ऐसा नहीं है, हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है। तो ये श्रद्धा कैसे आएगी? हाँ, चाहे हम शुद्ध भक्तों के चरणों का आश्रय लेंगे, चाहे हम भक्तों के चरणों का आश्रय लेंगे। चरणों का आश्रय का मतलब ये नहीं उनके चरण पकड़ के बैठे हैं। वो बेचारा घर जाना चाह रहा है, आप चरण पकड़ लिए, नहीं जाने दूंगा, ऐसा नहीं है। जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उनको फॉलो करना है बस, जो भी आपको बोला गया है। ऐसा नहीं है कि आपको आपको बोल दिया जाएगा आप घर बार छोड़ के आ जाओ, ऐसा भी नहीं है। आपके लेवल के अकॉर्डिंगली जितना आप फॉलो कर सकते हो उतना ही आपको बताया जाएगा। और अगर आप उसको बहुत सिंसियरली फॉलो कर रहे हो, कृष्णा विल बी वेरी प्लीज्ड, और आप देखेंगे कि आपकी श्रद्धा कितने गुना बढ़ गई है। उसको उसको इतना देखने मात्र से भगवान जो है टेस्ट दे देते हैं बस। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को भूख लगी होगी, प्रसादम के लिए लेट हो रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।